तो आज का सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सूरह यूसुफ आयत नंबर 36 से 57 तक। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो उतार और चढ़ाव आया, कि किस तरह से वो अपने बाप के घर में बड़े लाडों में रह रहे थे, फिर कुएं में पहुंचे, वहां से बाजार में बिके और फिर अजीज़े मिस्र के घर में। वहाँ पे अभी कुछ बेहतरी की ज़िंदगी आई थी कि एक बहुत बड़े फितने में वो पड़ गए, और वो आजमाइश क्या थी कि अजीज़े मिस्र की जो बीवी थी वो उन पर फरेख्ता हो गई, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था वही उनके लिए आजमाइश बन के रह गया। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिड्यूस करती है, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, और मल्टीपल टाइम्स कोशिश करती है। और एक दिन तो उसने अपनी जो बुरा इरादा था उसको अमल में लाने के लिए बाकायदा दरवाज़ों को बंद कर दिया और बिल्कुल बरमला यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत दी गुनाह की। और फिर हमने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे उस जगह से भागे हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। गो के वो जानते थे कि दरवाजे लॉक्ड हैं, लेकिन यही कोशिश होती है एक मोमिन की कि वो गुनाह से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे, चाहे वो जानता हो कि दरवाजे बंद हैं, मैं कहीं निकल नहीं सकूंगा इससे, मगर वो कोशिश करे। और अल्लाह ताला कोशिशों को देखता है और अल्लाह ही फिर रास्ते बनाता है। और फिर हमने देखा कि कैसे सामने अजीज़े मिस्र खड़ा था, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारात इनके सामने आ भी गई, मगर आदमी ने अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा। और चूंकि ये फितना कोई छोटा नहीं था, इसलिए जब उस औरत को अपनी इज्जत की फिक्र हो गई कि मेरी इज्जत तो खराब हो रही है माशरे में, तो उसने और औरतों को भी दावत दी और उनके सामने असल में ये जाहिर करने की कोशिश की कि आप मुझे बताओ कि क्या मैं कसूरवार हूँ, इसके सामने तो कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। और दूसरी औरतें भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, जिससे फितना और बढ़ गया। और बाज़ तफासीर में आता है कि वो सारी ही यूसुफ अलैहिस्सलाम की चाहत करने लगी। और फिर हमने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो मज़लूमियत और जो उनकी पाक दामनी है उसको जानने के बावजूद उन्होंने उनको कैद में डलवा दिया। और यही होता है जब कोई माशरा करप्ट वगैरह होता है, तो आपने देखा ना कि कोई अगर बात ना माने या कोई आपके मुताबिक ना चले, तो ये बड़े बड़े सियासतदान लोग या उमरा हुकमरान, उनका ये एक तरीका पुराना चला आ रहा है कि हम तो तुम्हें जेल करवा देंगे, झूठे मुकदमे किसी के ऊपर डाल के और उनको जेलें करवा देना, ये आम वतीरा है हमारे भी मुल्कों में। और कई बेगुनाह अपनी जिंदगियों के दिन जेलों में काट रहे होते हैं, गो के जेल को जिंदों का कब्रिस्तान कहा गया है, आसान चीज नहीं होती। और बेगुनाह इंसान जब जेल में हो तो फिर तो और ज्यादा ही उसके लिए परेशानी का बायस होती है ये चीज। तो आप देखते हैं कि जेल में क्या किरदार था यूसुफ अलैहिस्सलाम का। आपने उनका किरदार देख लिया, उनके घर में उनका किरदार आपने देखा, कुएं में उनका किरदार आपने देखा, अजीज़े मिस्र के घर में। तो अब देखते हैं कि जेल में उनका किरदार क्या होगा। आप क्या सोचते हैं, लेविश और लग्जरी लाइफ जो है वो तो अजीज़े मिस्र का घर, पहले उसके घर के अंदर वो गुलाम की हैसियत से थे, मगर अजीज़ ने अपनी बीवी को कह दिया हुआ था कि इसको दूसरों से बेहतर ट्रीट करना, दूसरों से अलग रखना, हो सकता हम इसको अपना बेटा बना ले, हो सकता है इससे कोई फायदा हमें मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने एक अच्छी जगह पे रख दिया था, और अब वहां से चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि या अल्लाह मेरे लिए तो कैद खाना बेहतर है, बाज तफासीर में आता है अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ये ना कहते तो कैद खाने में ना होते, कैद खाने में एंड अप ना करते बाज रिवायात में, तो कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही फरमाई कि आपने कैद में अपने आप को खुद डाला है, क्योंकि आपने खुद कहा कि अल्लाह मुझे ज्यादा महबूब है, अगर आप आफियत मांगते तो अल्लाह ताला आपको मुकम्मल आफियत दे देता। इससे पता चलता है कि कोई भी मुसीबत आ जाए ना, तो बड़ी मुसीबत हो तो उससे ये ना दुआ करे इससे तो अच्छा था कि मुझे वो मुसीबत आ जाती, कोई छोटी मुसीबत आ जाती। नहीं, हम कोई भी मुसीबत नहीं सह सकते, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। इससे तो बेहतर था कि मसलन आप कुछ भी कह सकते ना कि इससे तो बेहतर ये था कि मेरे साथ ये हो जाता, लेकिन ये तो ना होता जो अभी हो रहा है। कह देते हैं ना हम कभी कभी, क्योंकि जिस मुश्किल में होते हैं हम उससे बड़े मतलब तंग होके फिर ये बात कह देते हैं, तो उस वक्त भी ये नहीं कहना कि इससे तो बेहतर था ये हो जाता, नहीं बल्कि कहना कि अल्लाह मुझे आफियत दे, ना ये मुश्किल अच्छी है तो ना वो अच्छी थी। ठीक है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफियत की दुआ करने को बेहतरीन दुआ बताया। ठीक है कि इंसान आफियत की हमेशा दुआ मांगे, हमेशा अपने आप की कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला आफियत हमें दे। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जेल में पहुंचा दिया, उनकी इसी तरह की दुआ थी और वो दुआ कबूल हो गई। अब क्या हुआ जेल में, देखते हैं जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हो रहा है। वदखल माहु सिज्जन, और दाखिल हुए उसके साथ सिजन में, कैद खाने में, फतायान, दो गुलाम। दो गुलाम से मतलब ये है कि दो नौजवान, दो कैदी और आए। अच्छा, ये कैदी भी किस जुर्म में थे, इनके ऊपर ये इल्जाम था कि इन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे भी इतने सारे सबक हैं इस जेल के किस्से में भी। कौल अहदहुमा, उन दोनों में से एक ने कहा, इन्नी औरानी आसिरु खमरा, बेशक मैं देखता हूं कि मैं निचोड़ रहा हूं शराब। अब वो शराब तो खैर निचोड़ी नहीं जाती, मगर क्यों वो कह रहा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं, इसलिए कि जब अंगूर निचोड़े जाते हैं तो उससे शराब ही बनती है। वकाल आखर, और कहा दूसरे ने, आखिर नहीं है, आखिर तो आखिरी होता है, आखर जब खाके पर जबर हो तो दूसरे का माना होता है, इन्नी बेशक मैं अरानी, मैं देखता हूँ, आहमिलु फौकर रासी, कि मैं उठाए हुए हूँ ऊपर अपने सर के, क्या चीज, खुबजन, रोटी, तकुलु तैरु मिन, उससे परिंदे खा रहे हैं, नबी नाबी तावीली, हमें इसकी ताबीर बताइए, इन्ना ना नरौका मिनल मोहसिनीन, हम आपको देखते हैं मोहसिनीन में से। अब यहाँ पे ये एक पहलू बहुत गौर तलब है कि वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ही क्यों आए, उनको क्या पता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या आता है, या वो बता सकते हैं या क्या कर सकते हैं। असल में कैद खाने में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की शोहरत बहुत अच्छी थी, उनकी सच्चाई, उनकी सखावत, उनका अखलाक, उनकी कसरत इबादत, उनकी खुदा तरसी, उनका इल्म, उनका अमल, उनका एहसान, उनका दूसरों के साथ सलूक, ये सब के सामने जाहिर होता था। अब सब में मशहूर हो गए थे वो इससे, क्योंकि देखिए जो नेकी होती है ना, वो बोल बोल के नहीं की जाती कि मैं बड़ी नेक हूँ, मैं बड़ी तहज्जुद गुजार, मैं बड़ी आलिम फाजिल, मैं बड़ी, आपके किरदार से आपकी नेकी जाहिर होनी चाहिए, नेकी की खुशबू होती है और वो खुशबू लोगों तक पहुंच जाती है। अगर आप में वाकई इल्म है, अगर आप में सच्चाई है, अगर आप में अच्छा अखलाक है, तो जरूर लोगों को उससे ये चीजें, लोग इससे मुतासिर होंगे, लोगों तक पहुंचेगा। तो इसलिए वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। वैसे भी कहा जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सारे कैदियों के साथ ही बड़ी खैरख्वाही से, बड़े अच्छे सलूक के साथ, भलाई के साथ और उनकी एहसान के साथ दिलजोई करते थे, इनकी बीमारों की तीमारदारी करते थे और उनकी खिदमत करते थे, और ये सबके सामने जाहिर था। उनको तसल्लियां देते थे, जो परेशान होता था जाहिर है, जो कैदी वहां पे होंगे कोई खुशी खुश तो नहीं बैठे होंगे, उनको सब्र की तलकीन करते थे, उनकी उनको रिहाई की उम्मीद देते थे, उनका दिल बढ़ाते थे। हालांकि खुद देखें, खुद बेगुनाह है, खुद यहाँ पे पड़े हुए हैं, खुद से ज्यादा मुश्किल में कौन है, खुद तकलीफ उठा रहे हैं, कहाँ आरामदेह जिंदगी और कहाँ ये जेल, लेकिन फिर भी दूसरों को आराम देने की फिक्र करते थे और रात भर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे। वो तो सारे ये सारे जितने भी कैदी थे, वो सभी ये देख के बड़े इंप्रेस थे कि ये तो वाकई बड़े नेक इंसान है। हत्ता के जेल का जो अफसर था वो भी मुतासिर हुआ और उसने भी कहा कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं आपको छोड़ देता। तो देखिए ना, इससे पता चलता है ना कि जब आप जहां पे भी हैं, आप किसी बुरे माहौल में हैं, किसी आइडियल जगह पे हैं, आप चाहे मक्का मदीना में रहते हैं या कोई बहुत ही गुनाह की जगह पे रहते हैं, आपका किरदार, अखलाक, आपके हुस्ने सलूक, ये सब चीजें वो हैं जो लोगों तक पहुंच जाती हैं। बस दफा हम हालात के बिगाड़ की शिकायत में इतने आगे निकल जाते हैं कि हम कहते हैं अब मैं क्या करूं, मेरे तो हालात ही ऐसे, अब मैं क्या करूं, मेरे ऊपर तो गुजरी ही ऐसे, यानी कि मैं जो कर रही हूं ना, मैं जितनी बदमिजाज हूं, जितनी चिड़चिड़ी हूं, मैं जितनी लोगों के साथ बुरी तरह पेश आती हूं, तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पर हालात ही ऐसे गुजरे। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं। देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भी रह के मोहसिन हैं, उनको लोग किस तरह पहचान रहे हैं, मोहसिन के तौर पे। और हत्ता कि उन कैदियों ने अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया कि हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है। अब ऐसे तो नहीं कोई किसी से मोहब्बत करता ना कोई तो ऐसी बातें थी यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो उनके कोई काम ऐसे, उनकी कोई चीजें, और जिस तरह से वो जब आप लोगों के काम आते हैं ना, लोगों से हमदर्दी रखते हैं और उनकी खैर ख्वाही में पेश पेश होते हैं, तो आप देखिएगा अल्लाह ताला किसी के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा। मोहब्बत भी अल्लाह ताला की देन होती है। किसी के लिए अल्लाह चाहे तो दिल में मोहब्बत डाल दे और चाहे तो निकाल दे। तो ये मोहब्बत जब उन्होंने कहा ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब दिया कि मुझसे मोहब्बत ना करो, क्योंकि जब भी किसी ने मुझसे मोहब्बत किया तो मुझ पे आफत ही आई। बचपन में मेरी पुप्पी ने मुझसे मोहब्बत की जिसके नतीजे में मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया, फिर मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत की तो भाइयों के हाथों कुएं की कैद मिल गई, फिर गुलामी मिली, फिर जिला वतनी मिली, और फिर अजीज की बीवी ने मुझसे मोहब्बत की तो जेल में पहुंचा दी। तो बाज दफा मोहब्बतें भी इंसान के इम्तिहान बन जाती है। बाज दफा इंसान को कहीं से मोहब्बत मिलती है ना, तो पता नहीं कितने हासिद पैदा हो जाते हैं उसके लिए, पता नहीं कितने लोग जो जाते हैं, जो उसकी इस चीज को देख के और जलते हैं कि इसके पास क्यों इतनी मोहब्बत। हर पांच दफा यही मोहब्बत इंसान को उल्टा एक मुश्किल में डाल देती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि आपको हम मोहसिन देखते हैं। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे इर्द गिर्द वाले भी हमें मोहसिन के नाम से पहचानते, मोहसिना, चलो मोहसिना के नाम से जानते, कि बड़ी एहसान करने वाली है, बड़ी नेक है, ये बड़ी अखलाक वाली है, बड़ी काम आने वाली है, बड़ी हमदर्द शख्सियत है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा नहीं तो हमने अपने अंदर ये किरदार और अखलाक पैदा करने, हमारी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमें मोहसिन कहें, हमारे इर्द गिर्द वाले, सबसे पहले तो हमारे घर वाले, फिर रिश्तेदार, फिर दोस्त अहबाब हमसाए, ये हमें मोहसिन समझे। और ये एक दिन में नहीं होता कि आप किसी साथ एक दिन कोई अच्छा कर लें उसके बाद आप बैठ जाएं कि अब ये कब मेरे साथ अच्छा करेगा, ये तो मोहसिनीन का तरीका ही नहीं। इस तरह से आप मोहसिना नहीं बन सकती। मोहसिना बनने के लिए मुसलसल इंसान को खैर ख्वाही करनी पड़ती है, नेकी करनी पड़ती है, इरिस्पेक्टिव के वहां से क्या जवाब मिल रहा है। इससे कतई नजर कि मुझे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, वो होता है मोहसिन, जो हक से ज्यादा देने वाला होता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो कोई काम नहीं था कि वो कैदियों से हमदर्दी करें, उनकी दिलजोई करें। इनका क्या तो काम तो ये थोड़ी था, वो तो खुद वहां पे कैदी थे। लेकिन फिर देखें, यही किरदार की बुलंदी है उनकी। तो अगर हम नहीं भी हैं मोहसिनात, तो फिर हमें क्या करना है कि अब से अपने अंदर इरादा ये पैदा करना। और अगर पहले भी आप ये इरादा कर चुके और फिर टूट चुका, तो तब भी मायूस नहीं होना। हर सुबह ये इरादा करना, आज से मैंने एक मोहसिना की तरह रहना। फिर ये टूट भी जाएगा, फिर कभी गलती हो जाएगी, बदजुबानियां हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे, बड़े और कई के किस्म के काम हो जाएंगे, लेकिन फिर अपना इरादा मजबूत बांधना। और ये कभी कह के नहीं छोड़ देना कि मुझसे तो होता ही नहीं, मैं नहीं बन सकती, मेरे तो हमेशा ही ऐसे हो जाता है मुझसे। ठीक है, हम सब बहुत ही कमजोर लोग हैं, हम अंबिया के लेवल के तो नहीं है, मगर एटलीस्ट हम कोशिश जारी रख सकते हैं। और कम से कम ये तो हो सकता है कि जब जिस दिन हमारा खात्मा हो, तो उस दिन भी हम मोहसिना बनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो बहुत ही इम्प्रेसिव बात यहाँ से लगती है। और देखिए, तारीफ वो होती है कि जो दूसरा करे, तारीफ वो नहीं होती कि जो इंसान खुद ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहे, मैं तो ऐसी, मैं तो ऐसी, मैं तो ये करती हूँ, मैंने तो कभी किसी को ऐसे नहीं छोड़ा, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं तो कभी। ये क्या हुआ? बात तो ये कि कोई और कहे, कोई और इस चीज का आपको बताए या किसी को कहे कि ये फलां ऐसा है। तो यहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम के बहुत ऊंचे किरदार और अखलाक की का पता चलता है इस आयत की इस पोर्शन से और उनके यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आने से। अब वैसे अगर हम सोचें तो होना तो ये चाहिए था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे होते कि मुझे क्या, किसी के ऊपर क्या गुजरी, मेरे ऊपर तो खुद इतना जुल्म हुआ, मैं किसी को क्या तसल्लियां दूं। और मुसलसल उनके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती होती रही, कहीं भाई कर रहे हैं ज्यादती, कहीं वो अभी एक औरत पीछे पड़ गई, और कहीं बस पूरे शहर की औरतें इस तरह की निकल आई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या जवाब देती हैं? قال لا يأتيكما طعام, उन्होंने फरमाया नहीं आएगा तुम दोनों के पास खाना। तुरज़क़ानिही, तुम खिलाए जाते हो उसको, यानी वो जो खाना जिसको तुम खिलाए जाते हो, यानी जिस टाइम पे तुम्हारा खाना आता है, तुम्हें खिलाया जाता है, वो खाना तुम्हारे पास नहीं आएगा तुम्हारे खाने के टाइम पे, इल्ला मगर नब्बअतुकुमा बितअवीलिही, मैं बता दूंगा तुम दोनों को इसकी ताबीर कबला, इससे पहले अन्यतियकुमा के वो आए तुम दोनों के पास। ज़ालिकुमा, ये मिम्मा, उसमें से है जो अल्लमनी रब्बी, सिखाया मुझको मेरे रब ने, इन्नी बेशक मैंने, तरक तु मिल्लत कौमिन, मैंने छोड़ दिया है तरीका, एक मैंने छोड़ दिया मिल्लत को, तरीके को, या मिल्लत को कह दे या रास्ते को, कौमिन, उस कौम का जो अल्लाह पर और आखरत पर ईमान नहीं रखती थी, उसे कुफर करने वाले थे। अब वो क्या कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम कि देखो, तुम्हारी जो ख्वाब की ताबीर है ना, वो तो मैं बता दूंगा, इससे पहले ही बता दूंगा कि जब लंच टाइम हो। ये भी हो सकता था यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले ताबीर बताते, उसके बाद कोई दावत और तबलीग का काम करते, लेकिन उनकी भी हिकमत है इसके अंदर, इसलिए क्योंकि दो लोग हैं वो इंक्विजिटिव हैं, क्यूरियासिटी है उनके अंदर, उनको तजस्सुस है, वो जानना चाहती हैं, वो आए हैं, आप हमें बताएं क्या ताबीर है। अगर ताबीर पहले बता दी गई तो उसके बाद बात ही नहीं सुनेंगे। ये ऐसे ही है कि आपको कहीं जाके बुलाया जाए और वहां पे आपको कोई दर्स सुनाना है या कोई लेक्चर सुनना है, तो पहले आपको खाना दे दिया जाएगा, तो बाद में तो सब ऊँगने लगेंगे। तो पहले दर्स सुनाया जाता है, लेक्चर दिया जाता है, उसके बाद आपको खाना खिलाया जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर भी क्योंकि देखिए उनका जो तरीका कार है ना, वो ये है कि इन की अटेंशन को लिया जाए, इनकी तवज्जो हासिल की जाए, ये तवज्जो से सुन सके बात को। वो उनको तसल्ली भी दे दी कि फिक्र ना करो, तुम्हें मैं तावील बता दूंगा और उससे पहले ही बता दूंगा, ताकि वो ये ना सोचें कि आप तो, जैसे कुछ बाज दफा होता है ना कि लोग सोचते हैं तो अपनी बातों में पड़ गया, हम तो अपना मसला लेकर आए थे, तो किसी और तरफ ही चला गया, पता नहीं कब तक इसका लेक्चर बंद होगा, ऐसे बच्चे भी सोचते हैं ना, तो कि पता नहीं अम्मी तो लेक्चर दे रही हैं और कब इनका लेक्चर खत्म होगा और कब ये हमें कुछ बताएंगी बात। तो उनने कहा ये नहीं, खाने का जो टाइम है जिस पे, इसका मतलब जो कैदियों का जहाँ पे, वहां पे आपको पता है उनके आवर्स होते हैं जिसमें उनको खाना दिया जाता है, तो जो भी टाइम है उसमें खाना आने से पहले पहले मैं बता दूंगा, इसका मतलब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, बेसिकली दिस मीन्स कि मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मेरे बताने से पहले तुम पहले ये पैगाम सुनो। अच्छा, और दूसरी बात यहाँ पे अहम बात कि मैं तुम्हें बताऊंगा तावील इसकी इससे पहले कि वो खाना आए, ये तावील किस में से है, मिम्मा अल्लमनी रब्बी, इसमें से है जो सिखाया मुझको मेरे रब ने, ये उन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे दिए, ये नहीं कि मुझे बहुत आता है, हाँ, आपकी तावील बताना तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं, मैं तो बस फौरन बता देता हूँ तावील, ऐसे नहीं। आप देखिए उनकी आजजी, कितना भी इल्म इंसान के पास हो ना, तो नंबर 1 ये कि वो अल्लाह ताला की देन होता है, कभी भी ऐसा नहीं समझे मैंने तो खुद ही इतनी काबिल थी, मुझे तो खुद ही इतना आता था, मैंने वहां से पढ़ा, मैंने वो वहां से भी पढ़ा तो अल्लाह ताला नहीं पहुंचाया उसको आप तक, वो भी किताब किसी ने लिखी होगी, अल्लाह ने उसको इल्म दिया या उसने किसी से पढ़ा होगा, उसको भी अल्लाह ने इल्म दिया, पीछे जाते जाएं तो इल्म का सोर्स क्या है, आदम अलैहिस्सलाम को भी इल्म देने वाला कौन था, किसने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था, सूरह बकरा में हम पढ़ चुके कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखा दिए थे, सारे उलूम दे दिए थे, और फिर ये उलूम आगे से आगे ट्रांसफर होते रहे, जो भी डिस्कवरीज इंसान करता है, जो भी इन्वेंशंस होती हैं दुनिया के अंदर, इजादात होती हैं, वो भी उस इल्म की बिना पे है जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रख दिया। इसलिए कोई तकब्बुर ना करे कि मैंने खुद ही सीख लिया, नहीं, ये सब इल्म अल्लाह ही की तरफ से दिया गया है। तो ये इल्म मुझे सिखाया मेरे रब ने, मुझे दिया मेरे रब ने, तो इससे पता चला कि उनको कोई अपने इल्म का ऐसा गुरूर नहीं था, और उनको कोई अपने इल्म की ऐसे बहुत फखरिया बयान नहीं कर रहे थे, तो मुझे मेरे रब ने ये इल्म सिखाया है, तो इल्म अल्लाह ताला की देन होता है। और दूसरे ये कि जो भी इल्म आपको मिल रहा है, वो चाहे अब आप ये पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी कभी तकब्बुर का शिकार ना हो। देखिए जब आपको ये पता चल गया ना कि इल्म अल्लाह की तरफ से है, तो फिर तकब्बुर क्यों आया, तकबर तो तब आएगा जब आप ये सोचते हैं कि मैं खुद करने वाली हूं, मैं खुद लेने वाली, जब आपने मान लिया कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जो दी हुई चीज है उसके ऊपर तकबर कैसा, ठीक है। तो ये इल्म बड़ी एक प्रेशियस चीज है, इसको नूर कहा गया है, नूर, जी हाँ। और इस इल्म में भी कौन सी चीज है जो इंसान के लिए रुकावट बन जाती है, ये मैं आपको एक बात बताती हूँ, इमाम शाफी की बात है कि एक दफा उनकी नजर ना एक औरत के टखने पे पड़ गई, पूरी औरत पे नहीं, टखने पे, सिर्फ उसके एंकल को देख लिया उन्होंने, तो उसके बाद अपने उस्ताद से फरमाते हैं कि मुझे याद नहीं हो रहा, तो उस्ताद ने फरमाया तुम गुनाह छोड़ दो, गुनाह जो है ना ये इल्म के रास्ते में रुकावट बन जाता है, क्योंकि फरमाया इल्म अल्लाह का नूर है, और नूर नाफरमानों को, गुनाहगारों को नहीं मिलता, ऐसे दिल में नहीं आता, इसीलिए आप देखते हैं कई लोग कुरान पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो कहाँ जा रहा है, वो इल्म सिंक क्यों नहीं कर रहा, वो एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा शख्सियत में, वो नजर क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं नजर आता क्योंकि इंसान जितना ज्यादा गुनाहों में होगा उतना ही ज्यादा वो इल्म के नूर से महरूम रहेगा, पढ़ता भी रहे इल्म आएगा नहीं। अब उन्होंने सिर्फ एक औरत का टखना देख लिया था, और कहां ये कि हम ऐसे सीन्स देखें, ऐसी गैर महरमों की तरफ नजरें रखें, या ऐसी बातें सोचें, या ऐसी बातें पढ़ें, तो कैसे इल्म का नूर हमारे सीने में आएगा? तो गुनाहों की जहां और नहुसतें होती हैं, वहां पे ये भी एक नहुसत है कि इल्म दिल में नहीं रासे होता, जमता ही नहीं अंदर। ठीक है, तो वो फरमाते हैं मुझे ये इल्म मेरे रब ने दिया है, मेरा कोई यानी कमाल नहीं है। सुभान अल्लाह, इतने बड़े पैगंबर होके ये कह रहे हैं। तो हम भी यही आदत डालें, वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला। शोएब अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था ना, मेरी कोई तौफीक नहीं है मगर ये अल्लाह ही का दिया हुआ। और इल्म का गुनूर बहुत जल्दी आ जाता है इंसान में, चार कलमे वो पढ़ ले तो उसको लगता है कि मैं तो दुनिया के पता नहीं कितनी बड़ी आलिमा बन गई। इन्नी तरकतु मिल्लत कौमिन, मैंने तो छोड़ दिया तरीका इस कौम का जो नहीं ईमान रखती अल्लाह पर और आखरत के दिन पर, और उससे वो इनकारी है। यानी इसका मतलब है अपने आप को बरी जिम्मा कर लिया कि मैं नहीं उनको फॉलो करता, उन लोगों को जो अल्लाह और आखरत को नहीं मानते। इसे उन्होंने ईमान का बता दिया कि मैं इससे बरी जिम्मा हूं। और ये अंबिया की जुर्रत भी पता चलती है इससे कि उनमें कितनी जुर्रत होती कि मैं नहीं, सेम तरीके, क्योंकि उनकी पूरी कौम जो थी ना वो बुत परस्ती थी, वो नहीं शिर्क करने वाले थे जिनमें वो रहते थे। तो इस कौम का तरीका जो है जो अल्लाह पर और आखरत पर ईमान रखती, यानी इसका मतलब है कि मैं अल्लाह और आखरत पर ईमान रखता हूं। और देखें ये जुर्रत होनी चाहिए कहने की कि मैं ये नहीं मानता जो ये मानते हैं, मैं इससे अलग हूं। आजकल ट्रेंड ये चल गया है कि कहते हैं नहीं, किसी को ना कहो कि ये गलत है, सबको कहो सब सही है। आप भी सही हैं, हम भी सही हैं, आप भी ये खुदा तक पहुंचना चाहते हैं, हम भी ये खुदा तक पहुंचना चाहते हैं, तो फिर तो किस्सा ही खत्म। जब सारे ही सही हैं, जब आपने सबको ही कह दिया कि सब सही हैं, तो फिर बताएं जरा कि फिर झगड़ा किस बात का, फिर आप दावत किस बात की दे रहे हैं? वो भी सही हो गए, आप भी सही हो गए, तो क्या आप तो दीन की दावत ही खत्म हो गई ना, आप किसकी तरफ बुला रहे हैं? और देखें यहाँ पे एक बार दफा हमें समझ नहीं ना आती कि हम किसी के साथ कैसे ब्रिंग अप करें अल्लाह ताला की बात, ये नहीं समझ आ रही होती कि अब किस तरह से बातों बातों में कैसे बात निकाल लें और अल्लाह ताला का जिक्र ले आए। हम कोशिश भी कर रहे होते हैं तो समझ नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे देखें जब उन्होंने ये बात की, कैसे उससे बात यहां तक लेकर आए कि अब तुम मुझसे ताबीर पूछने आए हो ना, तो ये ताबीर का इल्म भी मेरे रब ने मुझे सिखा दिया। तो जाइए देखिए किस तरह से बात को वहां तक पहुंचाया। आप भी इससे सीखें, जब आप कहीं बैठे होते हैं आपको मुश्किल लग रही है कैसे मैं अल्लाह ताला का जिक्र लाऊं, कोई आपकी मसलन तारीफ कर देता है तो आप कहें कि ये तो मेरे रब ने ही ये मुझे दिया है, मेरे अल्लाह ताला ने दिया है, इसमें मेरी तो कोई तारीफ नहीं, मेरे रब ही की तारीफ है, और फिर आगे कोई बात शुरू कर सकते हैं। समझ आए? तो ये एक तरीका कार हम पैगंबरों से सीखते हैं। और दूसरे की हाजत है, किसी हाजत के लिए आपके पास आया है लेकिन उसमें भी तबलीग का पहलू निकाल लिया, ये नहीं कि भाई आपको मैं बता के भेज देता हूं, नहीं, उसमें भी उन्होंने निकाला कि मैं असल पैगाम जो अल्लाह ताला, देखिए एक ताबीर पूछना कब आया कोई मसला नहीं है, उसका कोई काम है आप उसके काम को करें, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है कि उनको तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया जाए, लोगों को अल्लाह की बात बताई जाए, अल्लाह से जोड़ा जाए। और आप देखें ये आम लोग नहीं है, हम तो आम लोगों से बात करते हैं ना, ये वो हैं जो कैदी हैं, किसी जुर्म में कैद है ना। जाहिर है वहां पे कोई चोर होंगे, कोई डाकू होंगे, कोई कातिल होंगे, कोई कुछ होंगे, और इनके ऊपर भी बहुत बड़ा इल्जाम था, कत्ल का इल्जाम लगा हुआ था, फिर भी उनको तौहीद की दावत, इस्लाम की दावत दे रहे। ये नहीं कह रहे कि इनको क्या बताना, ये तो खुद इस काबिल ही नहीं कि इनको कुछ बताया जाए, ये तो इतने बड़े बड़े मुजरिम हैं। तो आपने ये देख के नहीं तबलीग करनी कि ये कौन है, आपने पैगाम को पहुंचाना। और आपको की देखिए ये किरदार समझ आ रहा है कि जिसमें जेल में होते हुए भी तबलीग कर रहे। तो आप जहां भी हो, चाहे आप कैसे भी माहौल में, आप अपने ऑफिस में हैं, अपनी जॉब पे, कहीं ऐसी जगह पे हैं जो कोई, जहां पे कोई ऐसा कोई खास, कोई ऐसे लोग नहीं है जो कि बहुत कोई अच्छे किरदार अखलाक के हों, तब भी, या आप अपने स्टोर पे हैं, या आप अपने किसी भी बिजनेस पे हैं, या आप अपने घर में हैं, या आप किसी पार्टी में हैं, या किसी जगह पे भी, वहां पे अल्लाह तआला की तरफ दावत देना ना भूले। लोगों के मसले मसाइल आप सुने, उनको अच्छी एडवाइस दें, जरूर दें, लेकिन साथ साथ अल्लाह की तरफ बुलाएं। अब बहुत सारे लोग कहते नहीं जी हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है, पर नॉलेज अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए कौन सा नॉलेज चाहिए? आपको कोई विरासत के मसाइल तो नहीं पूछ रहा, कोई फिक की बातें तो नहीं पूछ रहा, हाँ पूछे तो आप कह दें नहीं मुझे नहीं आती, लेकिन अल्लाह की तरफ बुलाना तो सबसे सादा काम है, सबसे सिंपल काम। कि एक एक बात के अंदर ना कितनी इल्मी पॉइंट्स हैं, कितनी बातें हैं जो हम यहां से सीख सकते हैं। तो मुजरिमों में रहते हुए भी अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दावा का काम कर रहे हैं, तो आप और मैं तो कहीं मुजरिमों के अंदर, अल्लाह माफ करे, कहीं नहीं रह रहे, फिर हम क्यों नहीं करते क्या? और हिकमत देखें, हिकमत, कब कौन सी बात पहले बतानी है उनको, और उनको ताबीर भी बताएंगे मगर वो बाद में बताएंगे। अब समझ आ गई है ना आपको इसमें क्या हिकमत थी? अगर आपसे पूछा जाए कि पहले क्यों तौहीद की बात, पहले तो उनको वो जिस काम के लिए आते पहले वो तो कर देते, और फिर उन्होंने कहना था भाई छोड़ो इन बातों को सुनने को, तो उनकी उनका काम तो हो गया ना। तो इसी तरह आप देखेंगे उनको कोई बहुत लंबा लेक्चर भी नहीं देना शुरू होगा कि 2-3 घंटे गुजर गए हो और वो बोर हो गए हो और उसके बाद उनको ताबीर बताएं। आप देखिएगा कितने प्रिसाइजली, कितनी टू द पॉइंट बातें की हैं उन्होंने। अगर लंबी भी आप बातें शुरू कर दें तो वो सोचेंगे ये, जैसे मैंने कहा कि भाई ये तो लेक्चर ही देने शुरू गए, हम तो किसी काम के लिए आए थे, इन्होंने पता नहीं कोई और ही शुरू कर दिए। मुख्तसिर बात अगर दूसरे को आप देखेंगे कि कितनी हिकमत के साथ की, कि उनकी अकल को भी उभारा है सोचने पे। अब आगे आएगी बात मैं आपको बताती हूँ। वत्तबअतु, और मैंने फिर पैरवी किसकी की? अगर मैंने इनकी नहीं पैरवी की, अगर मैंने इन इनके तरीके को मैं नहीं फॉलो करता, तो फिर मैं किसका तरीका फॉलो करता हूँ? मैं फॉलो करता हूँ तरीके को अबाई, अपने आबाओ अजदाद की। मेरे आबाओ अजदाद कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, ये मेरे आबा हैं। यानी अब आप देख लें कि पैगंबरों के ऊपर ईमान को भी बता दिया उन्होंने, ठीक है? अगर सारे एक तरीके पे चल रहे हैं ना, तो मैं ये सारी कौम के तरीके पे चलने वाला नहीं हूं। चाहे इंसान अकेला ही हो मगर हक पे जमा रहे, खड़ा रहे। उन्हें ये नहीं कहा कि वो जो आधी तुम्हारी कौम का कुछ और मजहब है ना, मैं उनके ऊपर, ठीक है? अब मैं किसके तरीके पे हूं? इन पैगंबरों के, जिनको अल्लाह ने चुना हुआ। वैसे हम कहते हैं, देखें पहले हमने पढ़ा है कि वो लोग कहते हैं हम अपने आबा के तरीके पे हैं, तो यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं कि मैं अपने आबा के तरीके पे हूँ। तो क्या ये सही है अपने आबाओ अजदाद के तरीके को फॉलो करना? क्या सही है? जबकि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि वो जब उनसे कहा जाता है कि एक अल्लाह के दीन की इत्तेबा करो, तो वो कहते नहीं हम तो वो ही करेंगे जो हमारे आबाओ अजदाद करते रहे। तो इसमें और उस उन उनकी बात में क्या फर्क है? फर्क ये है कि जब आपके आबा सही दीन पे हैं, सही अकीदे पे हैं, आपको आप खुद तालीम लेते हैं और आपको पता है कि हमारे आबाओ दाद का भी यही तरीका है, तो कोई मसला नहीं है, फिर कोई हरज नहीं है। वो भी उनका भी वही तरीका, आपका भी वही तरीका। लेकिन अगर आबाओ अजदाद अल्लाह ताला के दीन के अगेंस्ट जा रहे हैं और आपको बताया भी जा रहा है कि अल्लाह का दीन ये कहता है, आबाओ अजदाद आपके कुछ और कर रहे हैं, तो फिर तो नहीं फॉलो करेंगे ना। फॉलो हक को ही करना है। तो ये वो बात इसलिए नहीं कह रहे कि अपनी को तारीफें कर रहे हो कि हाँ जी मेरे तो आबाओ अजदाद बहुत वो थे, बल्कि अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए कर रहे हैं कि मेरे तो आबाओ अजदाद भी इसी तरीके पे थे और मैं भी उसी तरीके की बात कर रहा हूं, उनके रेफरेंस से बात की है। अल्लाह अकबर। मा कान लना अन नुशरिक बिल्लाह मिन शई, हमारे लिए ये जायज नहीं कि हम शरीक ठहराएं अल्लाह के साथ किसी चीज को। अब देखें वो कैदियों से बात कर रहे हैं, मगर आप देखें तबलीग पूरी पूरी हो रही है, रिसालत की भी दावत बता दी, क्योंकि इब्राहिम इसहाक और याकूब तो रसूल हैं, अल्लाह पर ईमान भी बता दिया, आखरत पर ईमान भी बता दिया, रसूलों पर भी ईमान बता दिया, और ये नहीं सोचा इनको क्या समझ आएगी, ये तो कैदी ही हैं, इनको तबलीग का क्या फायदा, इन्होंने कौन सा सुननी है, ये तो पहले ही ऐसे हैं। एक तो साकी है वो वैसे ही उनमें, एक था बादशाह का कुक था और एक था बादशाह को शराब पिलाने वाला, तो ये साकी है, तो इन इन ये तो खुद इतने ऐसे काम करने वाला, इसको बता के क्या फायदा। और आप ये भी देखें कि यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा ना कि आबा की तकलीद का, तो याद रखिएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये इसलिए नहीं कह रहे कि मेरे बाप दादा ने जो मुझे सिखा दिया बस वो तो मैं तो वही कर रहा हूँ। एक होता है वो दीन जो बाप दादा ने सिखाया होता है, जो आपको शुरू से बता दिया गया होता है, क्योंकि आप एक मुसलमान घराने में जब पैदा होते तो वहीं आपने आंख खोली, आपने वहीं सीखा और आपके जहन में। एक होता है शऊरी इल्म, जब आप एक एज को पहुंच जाते हैं और आप खुद इल्म लेते हैं ना, तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे बाप दादा ने भी जो मुझे सिखाया वो भी सही था, वो भी यही चीज थी, या आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं जो हमारे बाप दादा हमें सिखाते थे वो सही नहीं था, कुरान तो ये कहता है, हदीस तो ये कहती है। तो खुद शौरी तौर पर इल्म लेना बहुत जरूरी है। तो अब वो कहते हैं कि नहीं है हमारे लिए कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक करें। शैइन का जो लफ्ज है ना, ये नकेरा है। नकेरा में ये होता है कि कोई भी चीज यानी चाहे बड़ी है चाहे छोटी है, किसी चीज को भी नहीं हम शरीक कर सकते, किसी चीज को भी नहीं, चाहे वो जर्रे बराबर भी हो तो हम उसको भी अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं कर सकते, यानी हमारी तौहीद बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। यहां से तौहीद की वैल्यू पता चल रही है, तौहीद का उलट जो है वो शिर्क अकबर, और जब शिर्क अकबर होता है तो फिर तौहीद नहीं होती, जहां पे शिर्क अकबर होगा वहां से तौहीद खत्म हो गई, और जहां शिर्क आ गया तो ये वो एक गुना है जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा अगर कोई इसके साथ ही दुनिया से चला गया। बाकी जिस गुनाह को अल्लाह ताला चाहे माफ कर दे। तो अल्लाह ताला का ये हक है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए और किसी की इबादत ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया था कि मुआज क्या तू जानता है अल्लाह का हक बंदों पे क्या है, मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं, आपने फरमाया अल्लाह का हक है बंदों पे, उसका राइट है क्या कि बंदे सिर्फ उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को भी शरीक ना करें, किसी को भी ना। बाज दफा हम अल्लाह ताला की असमाओ सिफात में किसी को शरीक कर लेते हैं। बाज जगहों पे आपने देखा है कि अल्लाह की जात में ही शरीक कर लेते हैं, जहां पे अल्लाह का बेटा बना दिया नौज़ु बिल्ला, या अल्लाह ताला की बेटियां मुशरिकी ने मक्का कह देते थे, तो वो जात में शिर्क है। बाज जगह पे सिफात में शिर्क हो जाता है। तो लेकिन इबादत जो है सिर्फ अल्लाह की, शिर्क से पाक। तो इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इबादत उसे करानी थी। इबादत तौहीद फिल इबादा के लिए, इबादत तौहीद में इबादत। तौहीद ऐसी चीज है जिसके अंदर किसी को भी, चाहे वो कोई बुजुर्गाने दीन हो, चाहे कोई फरिश्ता हो, चाहे अंबिया हो, चाहे कोई कोई बड़े हो, किसी को भी शरीक करना इंसान का तौहीद में शिर्क है। तौहीद के अंदर उसका मिलावट है। तो इबादत में अल्लाह को एक करना, तौहीद इबादत के अंदर, ये बहुत जरूरी है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, याद रखें। क्या कि यानी इबादत किसी और के लिए भी नहीं आप कर सकते, वरना शिर्क हो जाएगा इबादत तौहीद में। समझ आए? किसी किस्म की भी इबादत है वो, आप चाहे इबादतें, आप कौन कौन सी इबादतें होती हैं, इबादतों के बाज कहते हैं 3 अकसाम है, बाज ने 4 अकसाम में इसको डिवाइड किया। तो इबादत की अगर हम 4 अकसाम लेते हैं, एक कल्बी इबादत है कि आदमस कि जैसे कल्बी इबादत क्या है कि आपका दिल जो है ना तस्दीक करे, तस्दीक बिल कल्ब, कि आपका दिल मानता है अल्लाह ताला की तौहीद को। फिर आपकी बदनी इबादत है जैसे नमाज वगैरह है, रोजा वगैरह है। फिर आपकी माली इबादत है जैसे जकात है, सदकात है। फिर आपके चौथी बात है मुरक्कब को, दो इबादतें मिल जाना, मसलन है बदनी और माली मिल गए, वो कौन सी है, हज है, उमरा, इसमें माल भी लग रहा है, जान भी लग रही। तो ये सारी इबादत की अकसाम है। अब इनमें से ना किसी में भी आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। रुकू है, सजदा है, या आपकी माली बातें हैं, सदकात हैं, नजरो न्याज है, किसी को भी कुछ देना है, सिर्फ अल्लाह की खातिर दे सकते। ऐसे नहीं कि किसी और की वजह से दे रहे हैं, उसके नाम का मैं दे रही हूं। ठीक है? तो याद रखिएगा कि हमारी हमारी जिंदगी का मकसद महज इबादत नहीं, तौहीद फिल इबादत है। मजाई बात। और इसके बावजूद लोगों ने, आप देखें, आज इसी के अंदर इतने शरीक बना लिए हैं, जिन्होंने जात में शरीक बनाए वो तो आप जानते ही हैं। बहुत ही कम मजाहिब दुनिया में ऐसे हैं कि उनके यहाँ कोई एक खुदा का कॉन्सेप्ट हो, बहुत ही कम, वरना मल्टीपल खुदाओं की वो पूजा करते हैं। और बाज दफा एक खुदा मानते भी हैं, मगर उसके साथ साथ समझते हैं कि जब तक कुछ नेक लोगों का वास्ता या वसीला ना पकड़ लें, हम तो अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकते। लिहाजा वो नेक लोगों की सेवा में लग जाते हैं, या उनके गुण गाते हैं, या उन्हीं की तरफ भाग भाग के जाते हैं, अपनी सारी हाजतें उनके सामने लेकर जाते हैं, अपनी मुश्किलें उनको बयान करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं के सामने अपने मसले रखते हैं, उन्हीं की दरगाहों पे सजदे करते हैं, एक तरह से उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। और कहने को जुबान से कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, जब सजदे, दुआएं, रुकू ये सब किसी और के लिए हो गए, जब दुआएं किसी और के आगे मांगी जा रही हैं, तो फिर कैसे आप सोच सकते हैं कि ये तौहीद है और शिर्क नहीं कर रहे? अभी सोच समझते हैं कि हम तो बिल्कुल अच्छे पक्के मुसलमान हैं, जबकि जिंदगियां शिर्क से भरी नहीं है। तो यहां पे बार बार हर नबी की आपने दावत में देखा है ना कि शिर्क नहीं करना। तो जब आप दावत शुरू करें ना, तो तौहीद से शुरू करें। ये नहीं कि बस इधर उधर की बातें हैं, वो जन्नत में ये महल होंगे, जन्नत के ये होंगे, जहन्नम में ऐसे होगा, या फजाइल बताना शुरू कर दें अमाल के, नमाज पढ़ोगे तो ये होगा, वो पढ़ोगे तो वो होगा, ये इतनी दफा तस्बीहां कर लो, ये इतनी, ये तो बाद में आती है जब फाउंडेशन ही सही नहीं, तौहीद ही आपने बयान नहीं की, तो और कौन सी बात रह जाती है? ये किसी चीज को का भी कोई फायदा नहीं है। वो 50 नमाजें भी नवाफिल भी पढ़ ले, उसका कोई फायदा नहीं है अगर उसकी तौहीद ही सही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी में आता है, किताबुत तौहीद है, बुखारी में पूरा चैप्टर है कि हजरत मुआज को जब यमन का गवर्नर बना के भेजा तो फरमाया सबसे पहले उनको तौहीद की दावत देना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इसी से आगाज किया था ना, ये नहीं सफा पहाड़ पे चढ़ के ये नहीं लोगों को कहा था कि लोगों काबे को देखते रहना, इसको देखने का बड़ा ही सवाब मिलेगा, लोगों हज करते रहना, उमरे करते रहना, वो तो करते भी थे, तो बस करते रहना, इतना सवाब है इसका कि बस नहीं, तौहीद। और अल्लाह ताला की सिफात में तो बेशुमार लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला के अस्माओ सिफात में सबसे ज्यादा शिर्क मुसलमानों में इन्हीं में होता है। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक ना करना, किसी चीज को भी नहीं। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का फजल है हम पर, ये अल्लाह ताला का फजल है। क्या फजल है अल्लाह ताला का कि खालिस तौहीद इख्तियार कर लेना, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, ये कि अल्लाह किसी को ये तौफीक दे दे, इसकी वो ये राह दिखा दे, किसी को इस रास्ते पे ले आए, ये अल्लाह का फजल है। अलैना, हम पर, वा अलन नास, और लोगों पर। सब इंसानों के ऊपर, यानी हाल ही ना हम पर, यानी हमारे यूसुफ अलैहि सलाम और इब्राहिम और इसहाक और याकूब अलैहि सलाम, इन सारों की भी बात है कि बिल्कुल वो शिर्क नहीं करते। और ये नहीं हम कहेंगे कि हमारा ही इसके अंदर कमाल है, ये भी अल्लाह ही का फजल है, देखिए ये आजी होती है। लेकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग ना शुक्र अदा नहीं करते। ना शुक्री क्या चीज होती है? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना ना शुक्री है उसकी, शिर्क ना शुक्री है। देखें लेटर्स वही है ना, लेटर्स वही है, शीन काफ रा और शीन रा काफ। अगर आप ना शुक्री करते हैं तो इसी वजह से कि ना शुक्री किस चीज का नाम है? शिर्क करने के साथ होती है ये, यानी ना शुक्रा इंसान, वो जो इंसान ना शुक्रा है वो शिर्क करने वाला ही ना शुक्रा होता। इसलिए कि जो शिर्क करता है ना, असल में वो क्या कर रहा है? शुक्र तो अल्लाह का अदा करना चाहिए था, उसने औरों को शरीक कर लिया। नेमते तो अल्लाह ने दी थी, नवाजा तो उस रब ने था, और शुक्र कहीं और हो गया। तो अक्सर लोगों को ये बात समझ नहीं आती। अब आप देखें यूसुफ अलैहि सलाम बात बता रहे हैं और वो नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहे, कोई झगड़ नहीं रहे, ये इस वजह से कि यूसुफ अलैहि सलाम की क्रेडिबिलिटी थी, इसका मतलब उनकी बात को सुना जाता था वहां पे, ये उनके किरदार और अखलाक की बुलंदी थी जिसकी वजह से वो कितने अदब से उनकी बात सुन रहे हैं। बिल्कुल अंदर कोई बोल नहीं रहा है कि ये आपने क्या बात की, ये क्यों ऐसे कहा। तो ये भी अल्लाह ताला का फजल ही कहना चाहिए इसको, कि अगर अल्लाह ताला किसी को शिर्क से बचा लेता है। अपनी ना बड़ाइयां करते रहें कि हम तो शिर्क से बचे हुए, हम तो ऐसे नहीं करते, नहीं, अल्लाह ही है जो जिसने हमें भी बचा ली, ये उसी का फजल है। अरे अगर पैगंबर ये बात कह रहे हैं तो हमें ये बात कहते हुए कोई शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए कि हम कोई नीचे हो जाएंगे। या साहिबा ये सिजन, ए मेरे दो साथियों, अरबाब मुतफर्रिकूना खैरुन, क्या बहुत सारे आका बेहतर हैं? अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, या एक अल्लाह जो एक है, अकहार है, कहार कहते हैं जो डोमिनेट करता है, उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसकी ताकत के आगे कोई अपनी मुकाबले में कोई आ नहीं सकता, उसकी कोई मुखालफत नहीं कर सकता, उसके पास इतनी पावर होती है कि कोई उसकी आगे सर नहीं उठा सकता।
वो एक जो इतना पावरफुल है, जिसकी ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो बेहतर है ये बहुत सारे आका। देखिए एक आदमी ये बहुत सारे बॉस होना, तो वो झुंझला जाता है, कहता है किसकी मानू और किसकी ना मानू, वो इधर खेच रहा है, वो उधर खेच रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, मैं क्या करूं। कोई इंसान नहीं चाहता कि उसके एक से ज्यादा बॉस हो। दुनिया में ये बात समझ अगर आती है, तो वहां के लिए क्या ये बात नहीं समझ आती कि बहुत सारे खुदा वो जो तुमने बनाए में है, यानी कोई किसी चीज का खुदा है, कोई दौलत का है, कोई सेहत का है, कोई कुछ चीज का है, वो ज्यादा बेहतर है या एक खुदा बेहतर है जिसके पास सारी पावर्स है सब कुछ कर लेने की। आज देखिए इन्होंने इतने तरह के बुत बनाए हुए हैं, पता नहीं किस किस चीज के अलग अलग ही बुत हैं। कभी उसके पास जा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं, यानी इसी से पता चलता है कि इनमें से कोई भी कहार नहीं है, इनमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो सारा कुछ वो ही दे दे। उसमें भी कोई तौहीद नहीं, वहां पे भी एक को भी पूजा दूसरे को पूजा। अच्छा अगर ये इतने ही सच्चे खुदा होते तो एक कहता कि मेरे पास ही रहो ना, दूसरे के पास क्यों जा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि सब बेकार हैं और सभी कमजोर हैं, और जो कमजोर है वो खुदा नहीं हो सकता। तो कितनी ऐसी बात की है जिससे दूसरा ना सोचने लग जाए और उनकी अकल को उभार रहा है, और फिर उनको कैसे पुकार रहे हैं। जैसे दूसरे अंबिया को आपने देखा ना, वो क्या कहते थे, या कौमी है मेरी कौम, इसी तरह ये भी, या साहिबा ये सिज, ए मेरे दो साथियों। इससे उन्होंने अपने आप को कोई ऊपर करके नहीं कि मैं तो अल्लाह का नबी हूं और तुम क्या चीज हो, नहीं तुम मेरे जेल के साथी हो। तो अगर हम भी तबलीग करते हुए किसी को अच्छी तरह पुकारे ना, मेरी प्यारी बहन आप बात सुनिए, तो बहुत अदब के साथ, तमीज के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, तो ये चीज भी दूसरे को सुनने पे आमादा करती है। और अगर आप कहें इधर आओ बात सुनो, सुनती हो कि नहीं, तो फिर कौन सुनेगा। जब हम बच्चों को भी दावत दें तो तब भी उनके साथ नर्म रवैये के साथ बात कीजिए, ताकि वो आपकी बात को ज्यादा सुने। और गो के वो कहाँ वो दो कैदी, और कहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का मर्तबा, यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, और कहाँ ये कैदी हैं। और इनमें से तो एक जो वाकई, फिर पता चलेगा आपको आगे स्टोरी में, कि वो वाकई फिर गुनाहगार भी था, मुजरिम था, उसने जुर्म किया था। तो कहाँ एक मुजरिम और कहाँ एक नबी, वो क्यों कह रहे हैं उनको, वो उनके बराबर थोड़ी है। लेकिन असल में ना ये ह्यूमिलिटी जो होती है, आजी जो होती है ना, वो इंसान के अंदर होती है और उसके अल्फाज में झलकती है। जब अंदर तकब्बुर नहीं होता तो इंसान को ये कहने में कुछ नहीं मसला होता, या साहिबा ये सिज। हालांकि हमें पता है कि कोई कोई कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, तो उनके अंदर अपनी बढ़ाई का और दूसरों की हकारत का ऐसा ऐसी सोच नहीं थी ना, तो रवैये में भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सहाबा कहा जाता है, खैर उनकी तो शान बहुत बुलंद है, और यहाँ पे ये नबी भी साहिब कह रहे हैं उनको। और लिहाजा किसी को भी, चाहे इल्म में है, चाहे मर्तबे में है, चाहे किसी चीज में, आप वो सोचें कि मैं तो चलो बेगुनाह हूं, मैं तो यहाँ पे कैद हुआ हूं, लेकिन ये लोग तो अच्छे भले मुजरिम है, वो इनको मैं क्यों कहूँ अपना साथी। तो चाहे कोई इल्म में कम हो, मर्तबे में कम हो, दर्जे में कम हो, माल में कम हो, आपसे आप स्टेटस में कम हो, अगर आप उसको लुक डाउन करेंगे ना, तो आप अपनी बात नहीं पहुंचा सकेंगे। लुक डाउन करना ही नहीं है। और अंदाज में तभी आता है जब सोच में होता है। इसीलिए फिर हम अपनी आप देखें अपने नौकरों के साथ कैसे बात करती हैं, ये सिर्फ दावा की बात नहीं, दावा तो देखें बात का स्टेप होता है ना, पहले हमारा अखलाक अच्छा होगा तो फिर हम दावत भी करें देंगे किसी को। अगर अपना अखलाक ही अच्छा नहीं होगा तो दावत का काम ही कैसे मुअस्सर हो सकता है। वो इफेक्टिव होगा ही नहीं अगर आगे पीछे इतनी बदतमीजी करें, और एक दिन आप कहें आ जाओ मैं तुम्हें अल्लाह की बातें बताती हूँ, दूसरा क्या सुनेगा। तो ये इंसान के जब अखलाक में हो ना तो फिर दूसरा बात भी सुनता है, और जब सोच में नहीं होता तो अंदाज में भी नहीं आता, रवैयों में भी नहीं आता, मामलात में भी नहीं आता, फिर बोलने के तरीके फिर खुद बहुत सही हो जाते हैं। तो पहले सोच को सही करें, सोच में अपने आप को बताएं कि नहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अल्लाह ताला ने दुनिया में दर्जे जो हैं ये इंसानों के इम्तिहान के लिए रखे हैं, सूरह अनाम के आखिर में हम ये पढ़ चुके हैं, इसलिए है ताकि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाए, इसलिए नहीं कि तुम ऊपर होके बैठ जाओ और उनको जमीन पे बिठा दो, तू तुम्हें से नीचे, तू मेरे सोफे पे क्यों बैठेगी, तुम तो नीचे ही बैठा करो, तुम तो गंदे लोग हो और हम लोग तो साफ लोग हैं, तुम तो नीचे लोग हो और हम लोग तो ऊंचे लोग हैं। जब ऐसे रवैयों के अंदर ये चीज है तो वजह यही है कि सोच के अंदर अपनी बड़ाई का एहसास है, समझ जाए। जिस दिन ये एहसास खत्म हो गया ना उस दिन खुद ब खुद आपकी बातें ठीक हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। तो फिक्स यहां पे करना है दिमाग में, मा ताबुदून मिन दूनी ही इल्ला अस्मा अन समैतुमूहा, नहीं तुम इबादत करते उसके सिवा, अल्लाह के सिवा, यानी दूनी ही अल्लाह के सिवा तुम नहीं इबादत करते, मगर किसकी, जो सिर्फ नाम है जो तुमने रखे हैं और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, वरना मा अनजल अल्लाह बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ताला ने तो इसके लिए कोई दलील नहीं उतारी, ये पहले भी पैगंबर कह चुके हैं ना अपनी तबलीग के पॉइंट्स में कि जिनकी तुम इबादत करते हो वो वाकई उनकी तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई रियलिटी ही नहीं है, रियलिटी में वो क्या है, कुछ भी नहीं, एक पत्थर के बुत खड़े में, क्या इनके पीछे रियलिटी, बस किसी ने नाम रख लिए इनके, अब वो ही नाम चलते चले जा रहे हैं, बस नाम है, क्या चीज है प्रूफ इस चीज का कि ये सुनते हैं, ये देते हैं, इन पे कोई कुदरत है, कुछ क्या है, क्या प्रूफ है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्ला, नहीं फैसला मगर अल्लाह ही के लिए, यानी अथॉरिटी जो कमांड है वो सिर्फ अल्लाह ही के पास है, इनमें से किसी के पास नहीं, ये तो सिर्फ नाम ही है रखे, कोई नाम रख दे वो ये देने वाला है, ये दाता है, दाता आपने नाम रख दिया, क्योंकि इसकी कैसे नाम रखा, ये सारे ही पहले ही कहते रहते हैं दाता साहब, इन कहते हैं इनको, अब उनसे सुन लिया, आगे आपने रख लिया, फिर आपसे आपके बच्चों ने सुन लिया, फिर आगे से उनके बच्चों ने सुन लिया, एक नाम ही है ना, इस अकीदे के पीछे क्या है वरना, जो ये जो जितने आस्थाने दरगाहें जितने ऐसी जगहें हैं पूजा पाठ जो लोग जहां पे जाके करते हैं वो क्या है, क्या दलील है उनके पीछे कि ये यहां से कुछ देते हैं, बस सिर्फ लोगों की बातें, नहीं जी हम आए थे तो हमें कुछ मिल गया था, बस एक ने कह दिया, अब आगे से आगे वही चल पड़ा, कोई एक भी अकल वाला नहीं कि जो उठ के पूछे कि इसकी दलील क्या है, किसी किताब में आया है, अल्लाह की तरफ से कोई किताब आई है कि ये देते हैं, कहीं कोई वही उतरी है कि यहां जाके मांगा करो, किसी पैगंबर ने यही पैगाम दिया है, कहां से मिला आपको ये। तो अब यानी कमांड तो सिर्फ अल्लाह की है, हमारा उसने हुक्म दिया, उसने क्या, और अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया, उसकी क्या कमांड है, उसका ही सिर्फ हुक्म है ना, तो उसका हुक्म क्या है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, के तुम ना इबादत करो मगर सिर्फ उसकी, मैंने आपको जैसे बताया कि अल्लाह ताला का ये हक है बंदों के ऊपर, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी पूछा था कि फिर बंदों का क्या हक है अल्लाह पर, हालांकि बंदों का कोई हक नहीं है अल्लाह पर किसी चीज में भी, लेकिन ये वो हक है जो अल्लाह ताला ने अपने लिए अपने ऊपर खुद ही कर लिया कि ये मैं तुम्हें हक देता हूं, यानी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर खुद लाजिम कर लिया कि वो फिर बंदों को आग में नहीं डालेगा, कि ये यानी जब इंसान तौहीद पे कायम रहे, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म किया, उसका हुक्म किया है कि तुम सिवाय उसकी किसी की इबादत ना करो, इया का नाबुदू, फिर हम इसीलिए इतनी दफा दिन में कहते हैं अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। देखिए अगर तौहीद ही जिंदगी में ना सीखी तो क्या सीखा, फिर जिसने जो हमें पैदा करने वाला, हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा रोजी रसा, हमें परवरिश करने वाला, हमारा ख्याल करने वाला, हमारी हिफाजत करने वाला, हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला, उसी को ना पहचानना तो आप दुनिया में कुछ बन गए ना। आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, PhDs हैं, कोई फलसफी हैं, कोई बहुत बड़ी माहिर, कोई खातून हैं, हाउसवाइफ हैं, आप जो मर्जी हैं, आप असल में कुछ नहीं है। इससे बड़ी क्या नाशुक्री हो सकती है? जिसका दिया हुआ सब कुछ है उसी को ना पहचाने, जो दिन और रात हमारी निगहदाश्त कर रहा है, जो हमें परवान चढ़ाता है उसी को ना हमने समझा, जो जब से हमारा वजूद कहीं भी किसी फॉर्म में भी था, किसी फॉर्म में भी, चाहे वो रूह की फॉर्म में था, चाहे वो नुतफे की फॉर्म में था, चाहे वो रहमे मादर में किसी एम्ब्रियो की फॉर्म में था, चाहे एक छोटे बेबी की फॉर्म में था, हर जगह पे जो हमारी केयर करने वाला, जो हमें संभालने वाला, जो हमें देखने वाला, हमारी हमारा ख्याल करने वाला जो था, उस ख्याल करने वाले को ही हमने ना पहचाना, हमें पता ही नहीं वो कौन है। इससे बड़ी क्या महरूमी और क्या बदनसीबी हो सकती है किसी इंसान की, बताइए। छोड़े इस बात को कि हम सोचे, कोई लोग कहते नहीं जी हमें तो कुरान की जरूरत नहीं, हम तो कुरान पता नहीं, जैसे उनको पहले ही सब कुछ ही पता है, पैदा हुए ही थे तो पढ़ के ही आए थे कहीं से। मगर इस बात ये नहीं है कि अहकामात हमें समझ आते हैं या हमें अहकामात पता है या नहीं पता, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि तुम कुरान को इसलिए सीखो कि ये तुम्हारे मालिक का और तुम्हारी केयर करने वाले का और तुम्हारे से सबसे ज्यादा हमदर्दी रखने वाले का और तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल करने वाले का कलाम है। ये उसकी पहचान है, ये कुरान बताता है उसके बारे में। इतनी भी समझ नहीं आती? मैं तो कहती हूँ ऐसे अपने जो मोहसिन को ही ना पहचाने, जिसने उसके ऊपर इतने एहसानात किए हैं, तो वो कैसा इंसान है? वो क्या इंसान है जो अपने ऊपर एहसान करने वाले को ही भूल जाए? भूलना तो दूर की बात, वो जाने ही ना कि वो कौन है, जाने ही ना, उसको पता ही नहीं। चाहे वो दुनिया में गुम है इसलिए, या चाहे उसने कोई और शरीक बना लिए इसलिए, कोई भी रीजन है, या वैसे ही गफलत और सुस्ती है, वॉट एवर रीजन, लेकिन ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, ये बदनसीबी है, बदनसीबी, और कुछ नहीं कहा जा सकता इसको। अल्लाह ताला को फर्क नहीं पड़ता तुम उसकी इबादत करो या ना करो, जो हदीसे कुदसी है कि सारी दुनिया भी तुम्हें सबसे बुरे आदमी के दिल की तरह हो जाए, मतलब ना कि इबलीस के, नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि उसके दिल की तरह सारे हो जाए ना, तो अल्लाह ताला की बादशाही में एक जर्रे बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसको नहीं है जरूरत कि आपने इबादत करनी है तो उसकी कोई बादशाह चलनी है, ऐसी बात नहीं है। मगर हम कितने वो फिर, यानी आप वो देख लेना कि बेवफाई भी है उसमें, ना शुक्री भी है इसके अंदर, और बदनसीबी भी है इसके अंदर, कि हमें फिर होना चाहिए। देखिए, हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, के एहसान के बदला सिवाय एहसान के कुछ हो सकते हैं? कोई आपके साथ अच्छा करे ना, तो अल्लाह ताला ने फितरत में डाला हुआ कि इंसान पलट के उसको अच्छी निगाह से देखता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। कई लैंग्वेजेस, हर जो काफिर भी हैं उनकी लैंग्वेजेस के अंदर भी कोई ना कोई शुक्रिया के अल्फाज हैं, कि आपके साथ कोई अच्छा करता है आप कहते हैं शुक्रिया, उसको थैंक करते हैं उसका। तो क्या बात है, आप एक अपने लिए दरवाजा खोलने वाले का भी थैंक यू बोल देते हैं, और जिसके एहसानात तले हम दबे हुए हैं कि हमारा रुआ रुआ है ना हमारे जिस्म का, ये भी उस रब के एहसानात तले दबा हुआ है, और हम बदकिस्मत लोग कि उसको ना पहचाने, हम उसकी बात ना करें, हम उसको वो हक ना दें जैसे उसका हक है। हमा कदरुल्लाह हक कदरी, इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी जैसी पहचाननी चाहिए थी, जैसी कदर करनी चाहिए थी। लोगों तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें अकल है, समझ है, सब कुछ है, तुम्हें ये पता है कि इंसान इंसान के साथ कुछ अच्छा करे तो उसको शुक्रिया कहो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर कितनी नेमतें आज तक निछावर कर चुका है जिनका तुम्हें हिसाब ही नहीं है, फिर भी तुम उसका हक उसको नहीं देते कि उसका हक क्या कि सिर्फ उसकी इबादत करो, ये उसका हक है, उसका राइट है, तुम उसके बन के रहो किसी और के नहीं। अल्लाह अकबर। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ये तबलीग कर रहे हैं, हालात देखें, हालांकि जेल के हालात कोई बड़ी, कोई बिस्तर पे बैठ के, कुर्सियों पे बैठ के, आरामदेह कमरों में बैठ के तो बातें नहीं हो रही ना, ये जेल का माहौल है, और जेल का माहौल सख्त माहौल होता है ना, उसमें भी उन्होंने तबलीग की। मुझे बताएं, अल्लाह माफ करे, हम में से किसी के भी ऐसे हालात नहीं है, फिर भी हमारे पास 100 बहाने हैं, जब ये ऐसे हो जाएगा फिर करूंगी, मौसम भी अच्छा हो, हालात भी अच्छे हों, फ्रेंड्स भी साथ जा रही हों, वहां पे भी मेरी वाह वाह हो जाए, फिर वहां पे एसी भी होना चाहिए, फिर वहां पे कंफर्ट भी होनी चाहिए, फिर वहां पे खाने पीने का इंतजाम भी होना चाहिए, रिफ्रेशमेंट्स होनी चाहिए, ये तब जाके मैं कहीं करूंगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ पे क्या मिल रहा? तो मोमिन जो होता है ना, वो हालात का और जो एनवायरनमेंट है उसके सूटेबल होने का इंतजार नहीं करता, वो जिधर है उधर अल्लाह की बात लेके बैठ जाता है। बात समझ आई? आप जिधर हैं, आप किसी गांव में रहती हैं, शहर में रहती हैं, कहीं किसी भी एज ग्रुप की हैं, कितनी ही आपको आपके करीब हालात मुश्किल हैं, तब भी आपको ये काम करना है। और फिर देखिए क्रिटिसाइज भी कर दिया कि नहीं तुम इबादत करो उसके सिवा, जिनकी नहीं तुम इबादत करते उसके सिवा, मगर कुछ नाम है बस, वो ये नहीं कहा कि हाँ ये अगर इनको ऐसे कह दिया ना तो देखो ये तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, बता दिया उनको कि ये कुछ नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, समझ आई बात? ये जो चीजों से हम डरते हैं ना कि ये बात ना छेड़ना, बस अच्छी अच्छी बातें बताओ, ऐसी बात को बताओ ही ना कि कहीं इसके अंदर कोई गलती है। ذلك الدين القيم, ये है दुरुस्त दीन। तो देखें चंद अल्फाज के अंदर उन्होंने कैसे पूरे दीन का खुलासा एक रख दिया उनके सामने कि ये है दुरुस्त दीन, यानी अगर इस दीन को अपना लोगे तो तब तुम सीधे रास्ते पे होगे। वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यालम, लेकिन अक्सर लोगों को समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है, तौहीद की तरफ आते ही नहीं है, इसीलिए फिर अक्सर लोग ला यालमुन नहीं इल्म रखते, तो इसका मतलब इल्म लेना चाहिए, अक्सर लोग इल्म लेना ही नहीं चाहते, होता ही नहीं है, इसी वजह से जहालत में ही भटकते रहते हैं, और वो समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, जितना आपके पास इल्म आता जाएगा उतना ही आपको ये एहसास होगा कि मुझे कुछ नहीं पता, ये बातें हैं कि मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, ये वो ही करते हैं जिसको कुछ नहीं पता होता। तो इन्होंने मुख्तसिर बात की, लेकिन आप देखिए कितनी जामी है, सारा दीन का खुलासा बता के फरमाया ये है दीन दरुस्त, ये है असल दीन, और ये नहीं कि पूरी कहानियां खोल के बैठ गए हो, तुम ये गलत करते हो, वो गलत करते हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, बादशाह तुम्हारा मोहसिन था, तुमने उसको क्यों जहर देने की कोशिश की, तुमने क्या जुर्म किया, अच्छा बताओ अब अपनी कहानी, उस सब चीजें छोड़ के सीधा टू द पॉइंट बात, और मुख्तसिर बात, और दलील के साथ बात, और अक्ल को उभारने वाली बात, सोचने पे मजबूर करने वाली बात, और उसके बाद ये नहीं फरमाया अब बताओ तुम कलमा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, अब आज वो कलमा पढ़वा के ही छोड़ना है ना, फिर नहीं, अब आ गया, अब उनको दीन का बता दिया ना कि दीन ये, दीन दरुस्त दीन ये है, अब उनको छोड़ दिया, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम ना इनको मुसलमान करके ही छोड़े, आज ये हमारे स्टॉल पे खड़े हुए हैं, अगर खड़े हैं तो यहां से कलमा पढ़ के ही जाएं। उनको कहते हैं कि ख्वाबों की ताबीर को छोड़ो, ये ज्यादा जरूरी चीज है। नहीं, अब उनको जो उनसे वादा किया था अब उनको बता रहे हैं, या साहिबा ये सिज्न है मेरे कैद के साथियों, अम्मा अहदुकुमा तुम में से एक उसका मामला क्या है, फयस्की रब्बहु खमरा वो पिलाएगा अपने आका को शराब, व अम्मल आखरू और जो दूसरा है फयुसलबु फतअकुलु तैरु मिन रअसिही तो उसको सूली चढ़ा दिया जाएगा तो उसको खाएंगे परिंदे उसके सर में से, यानी नोचेंगे उसका सर, उसको सूली चढ़ा दिया जाएगा, सूली पर लटका रहेगा, फिर परिंदे आके उसके, परिंदे फिर आपको पता ना गिद्ध वगैरह आके फिर इंसान को खा लेते, नहीं नहीं उसकी मौत है और एक है वो वापस अपनी जॉब पे चला जाएगा। लेकिन आप गौर करें कि ये नहीं बताया कि जिसने ये वाली सुनाई थी ख्वाब उसका ये होगा, जिसने ये वाली सुनाई थी उसका ये होगा, ये क्यों नहीं फरमाया? इसलिए कि ये पैगंबराना शफकत है। देखिए जिसको अगर कह दिया जाए तुझे तो मर ही जाना है, तेरे तो सर को नोचेंगे परिंदे, वो तो उसी वक्त ही मर जाएगा, वो तो गम से ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं बताया, बस एक का ये होगा एक का ये होगा। कुदियल अमर लदी फी तस्तफ्तियान, फैसला कर दिया गया मामले का उसमें जो जिसमें तुम दोनों जवाब मांगते हो, इसका फैसला हो गया यानी अब ऐसा ही होगा।